हम सब मिलकर हो सकता मार देते, लेकिन पूरा गधों से भरा हुआ काल बल और सभी आप तुल्य दुकासुर के समान बलवान, इसलिए हमारी शक्ति से बाहर ये बात है उसको मारना। तस्मत कृत नराहरा भीतर निर्भीर अमित्र हम न से बड़े पक्षी संघ विवर्जित, वो इतना बलवान है, उसका परिवार इतना बलवान है कि वे कई बार वहां जाने वाले मनुष्यों को खा गए। जो भी गया ताल वन में कृत नराहर, तो नरों को ही आहार करे। इतने बलवान असुर हैं कि कोई आदमी जाए तो उसी को खा जाए तो बच्चे डर है कि हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग आए तो खा जाएंगे, इसलिए अब वहां की पशु तक नहीं जा रहा है, यहाँ तक कि पक्षी भी ताल वृक्षों पर नहीं बैठ सकते, उनको भी खा जाते मार के अब कर करके पक्षियों को भी खा जाते, इसलिए न पशु जा रहे हैं न पक्षी जा रहे हैं। अतः अगर उन लोगों को मार दिया जाए तो हम लोगों को फल मिलेगा और पशुओं को घास से भी। कई महीनों वर्षों से वहां की घास को कोई पशु नहीं चरा, तो घास भी बहुत बड़ी हुई, इसलिए गौओं के हित के लिए और हमारे सुख के लिए चलो। विद्यंते और भुक्त पूर्वाणी फलानी सुरभिणी च, वहां ऐसे ऐसे फल हैं तालवन में जो हम लोगों ने जिंदगी भर नहीं खाया है, वहां के जो ताल वृक्ष हैं वो स्पेशल हैं और वहां का फल स्पेशल है। आज भी बच्चे ताल जब खाते हैं तो ताल के छिलके को हटाकर उसमें एक लकड़ी लगा करके और पेरते हैं उसको, पेर करके मक्खन जैसा कोमल उसमें से निकलता है और उसको खाते हैं, बहुत मधुर होता है। तो भगवत सखागण कह रहे हैं अभुक्त पूर्व कोई नहीं खाया है, और ऐसा मत समझो कि अन्य जगह जो ताल वृक्ष है वैसा फल है, विशिष्ट फल है सुरभिर च, उसमें से बहुत सुगंध आती है, ऐसा वही सुरभिर गंधो विशु चिन्हो अग्रियते। और कृष्ण बलराम थोड़ा ध्यान से सुन करके देखो, हवा में जो इतनी सुगंध फैली हुई है वो उन वृक्ष उन फलों की सुगंध है तो श्री कृष्ण और बलराम सूंघने लगे, अद्भुत सुगंध आ रही है, पहले ध्यान नहीं दे रहे थे क्रीड़ा में आविष्ट होने के कारण। ये बच्चे जब कहे कि जरा सूंघ करके देखो कितनी सुगंध आ रही है फलों से, तो उसी तरह का स्वाद भी है, केवल सुगंध ही नहीं है लेकिन स्वाद तो दुर्लभ है। सुगंध तो नाकों को मिल रही है लेकिन जीवों को स्वाद नहीं मिल रहा है, तो चलो खाओ, खाओगे तब जानोगे कितना सुंदर फल है। लेकिन प्रेम में, प्रेम के राज्य में यह स्वभाव होता है कि प्रेमी यह कहता है कि हमें कुछ दो, हमारी सेवा करो, मैं चाहता हूं। गत्यक्षतानी न कृष्ण बंध लोभित चेत सं, उल्टा कहा, प्रेम राज्य में यह नहीं होता है मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपको सुख देना चाहता हूं, बल्कि इनडायरेक्ट में बोलना पड़ता है मैं ऐसा चाहता हूं। अगर दूसरों को खिलाना होता है और अपने खाने की इच्छा नहीं है, भूख नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरों को खिलाने के लिए आदमी कहता मैं कुछ खाना चाहता हूँ, उठा करके धीरे धीरे खाने लगता है जिससे कि वो खाए। तो ये कहते हैं कि प्रयक्षता कृष्ण गंध लोभित चेत सन, उन फलों के गंध से हमारा चित्त लुप्त है, इसलिए हमको फल दो, चलो उन धनुकासुर को उसके परिवार के साथ मार करके और हम लोगों को फल दो, हम फल खाना चाहते हैं। वांछास्ति महती राम, कृष्ण से कह रहे हैं, श्री राम से कह रहे हैं, हमारी बहुत इच्छा है राम, हमारी बहुत इच्छा है, महती वांछा, हमारी महत्वाकांक्षा है फल खाने की। और हे कृष्ण गंध लोभित चेत सन, हमारा चित देखो उसके गंध से लुप्त हो गया है, गंध आ करके हमारी जीवा रसनिंद्री को उत्तेजित किया है, अब जीवा नहीं खाना चाहती, इसे चलो। और गम्यता में यदि रोचते, लेकिन कोई दबाव नहीं है, यदि आपको अच्छा लगे तो चलिए, दोनों यदि अच्छा लगे तो चलिए। अंत में श्री बलराम जी से कह रहे हैं, क्योंकि ताल वन में श्री बलराम जी की लीला ही प्रधान होगी, एवं सुहृद बचा श्रुतवा सुहृद प्रिय चिकित्सया प्रहस जगमतुर गोपेर वृत्त ताल बनम प्रभु, तो अपने मित्रों की बात सुनकर दोनों प्रभु हंसने लगे, तो कहे कि गंध से हमारा चित्त लोभित हो गया है, फल दो, ये करो वो करो, तो हंस करके और अपने मित्र की इच्छा को पूरी करने के लिए वे चले, गोपों के साथ चल रहे, भगवान श्री कृष्ण और बलराम का इस तरह काल भर में जाना एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण लीला है। बच्चे उत्साह से हैं और जान रहे हैं कि आज भयंकर मारा जाएगा, क्योंकि इसको बहुत असुर आए और सब मारे, कोई बाकी नहीं। इसलिए बच्चों को सहज विश्वास है कि भगवान नारायण की कृपा से कृष्ण के पास आते ही उनको मरना है। भगवान नारायण से कौन बच सकता है? नारायण के भीतर भगवान कृष्ण भीतर नारायण का आवेश मारेगा, और बलराम जी का भी वैसा ही प्रभाव था। तो वे वहां गए और वहां पहुंचकर श्री बलराम जी ने सबसे पहले काम किया, वह प्रविश्य बहुध्यान तालन हम परिकम्पयन हलानी पाते मत द्वीप वर्षा। श्री बलराम जी गए और ताल वृक्ष को पकड़े, ताल वृक्ष को, और झकझोरने लगे। झकझोर इतना जोर से झकझोरे कि कई फुट बदबद गिरे नीचे इधर उधर। इसके बाद दूसरे वृक्ष झकझोरे, उस तरह कई वृक्षों को झकझोर करके फल बहुत गिराए। तो फलों के गिरने का शब्द सुन भेल उठा और लगा विचार करने, ये क्या हुआ? क्या आंधी के ही फल ऐसे गिर रहे हैं? वो अन्य गधों के साथ विचार करने लगे और श्री बलराम जी बहुत फल डा दिए। जैसे मतवाला हाथी एक साधारण वृक्ष को झोर रहा, वैसे श्री बलराम झोर रहे, वृक्ष झकझोर रहे। तो फला नाम पता शब्दम निशन असुर रास भाव व्यधावत क्षिति तल संगम परिकम्पयन। फला नाम पतनाम शब्दम श्रुतवा निशम्य, वह असुर रास भाव, वह गर्धव राक्षस, गद्धा के रूप में रहने वाला वह असुर, वह सुनते ही दौड़ करके चला। गद्धे जैसे दौड़ते हैं वैसे दौड़ करके बड़े वेग से आया, और उसके चलने से पृथ्वी कांप रही थी पर्वतों के साथ। इतना भारी उसका शरीर था, इतना बलवान था कि उसके दौड़ने से पृथ्वी में कंपन हो रहा था। सनगम पर्वतों के साथ, पर्वत को नग कहते हैं, न माने नहीं, ग माने चलने वाला, गमन करने वाला। पर्वत कहीं चलता नहीं इसलिए उसको नग या अग कहते हैं। और आया समेत तरसा प्रत्येक द्वाभ्याम पद्याम बलम भी मुंचन पर शरत खल, बल में शरीर में बहुत बल था, तो बली और खल सुखदेव गोस्वामी उसको विशेषण दे रहे हैं। धेनुकासु बली था, बल वाला बलवान, और खल तरसा समेत तो बहुत वेग से आया, और प्रत्येक द्वाभ्याम पद्याम श्री बलराम के पास आया। जो श्री बलराम वृक्ष को झकझोर रहे थे और झकझोर करके अब खड़े हो गए, तो उनके पास आया और आ करके थोड़ा फिर करके और अपनी दुलप्पी चलाया पीछे के पैर पे। ये गधों का घोड़ों का स्वभाव है, पैर से प्रहार करते थे, अपने पिछले पैर से दुलप्पी मारा जोर से श्री बलदेव पर। और का शब्दम, का शब्दम तो कुत्सित शब्दम, जैसे गधा रेखते हैं वैसे मार करके और लगा रेखने। श्री बलराम जी चुपचाप खड़े रहे, तो फिर आया पुनराशाद संग अब उत्कोष्टा पराक्षिता चरण व प्रव राजन बलाय प्राक्षित पुरुषा। पुनः दूसरी बार आया और आकर के फिर उसी तरह का रेकना, मतलब कुत्सित शब्द करता हुआ विमुखी होकर के, मतलब बलराम से मुख फेर करके फिर पिछला पैर चलाया। इस बार जब पैर चलाया क्रोध से चलाया बड़े वेग से, तो सतम गृहित्वा प्रपदुर भ्राम तैक पाणी में, श्री बलराम जी उसके दोनों पैरों को पकड़ लिए एक बार, उसको पकड़ लिए पैरों से, प्रपद दोनों पैर को पकड़ लिया और इसके बाद घुमाना चालू किए। वो पहाड़ के समान बड़ा गधा था, लेकिन श्री बलराम जी के लिए भूमंडल भी कुछ नहीं है, तो वो किस गिनती में। ये घुमाने लगे और घुमाने में ही वो मर गया, बड़े जोर से घुमा रहे और घुमा करके एक ताल वृक्ष पर मारे जोर से। ये भगवान श्री बलराम जी की अद्भुत लीला थी, एक वृक्ष पर मारे और वह वृक्ष इतना तेजी से गिरा कि उससे दूसरा वृक्ष गिरा, तीसरा गिरा, चारों तरफ इस तरह से हजारों वृक्ष गिर गए एक वृक्ष पर मारने से, इतना वेग से उन्होंने मारा। एक ताल वृक्ष दूसरे को जोर से झकझोरा, उसको गिराया, उसके गिराए इस तरह कई वृक्ष गिर गए और वो तो मर ही चुका था, घुमाने नहीं मर गया था। भ्रामर त्यक्त जीवितम, भ्रामर त्यक्त जीवित का अर्थ भ्रमण, घुमाने में ही त्यक्त जीवित, उसके प्राण निकल गए थे, इतना जोर से घुमाए कि प्राण निकल गए। यह है भगवान का बल। यद्यपि श्री बलराम जी का यह वास्तविक बल नहीं है, एक वास्तविक वर्णन, मतलब इतना ही बल नहीं है, लेकिन वे बच्चा है इसलिए बच्चा के अनुसार उनके बल का वर्णन किया जा रहा है, नहीं तो भूमंडल को एक चुटकी में मसल दे समाप्त हो सकता है, उनके लिए कौन बड़ी बात है। नर लीला के अनुसार वर्णन किया जाता है और सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं एक पाणिना, एक हाथ से घुमाए, ऐसा नहीं कि दोनों हाथ लगा करके और घुमा रहे, एक हाथ से दोनों पैर पकड़े और घुमा करके चिक्षेप तृण राजाग्रे। ताल को वृक्ष नहीं कहा गया है, इसको तृण कहते हैं, ये तृण राज है, ये घास है वास्तव में। हम लोग तो वृक्ष शब्द लगा देते हैं लेकिन कहीं भी वृक्ष शब्द नहीं। तृण राजाग्रे, उस तृण राज तृण श्रेष्ठ के अग्रभाग पर मस्तक पर मारे और वह अन्य तृण राजों को गिराया। तेना हतो महातालो वेपमानो बृहच्छिरा पार्श्वस्थम कंपयन भग्न सचान्यम सोपिचापरम। इस तरह वह वृक्ष गिरा और उसे दूसरा गिरा, दूसरे से तीसरा गिरा, तीसरे से चौथा, इस तरह हजारों वृक्ष गिर गए। बलस्य लीलयोत्सृष्ट खर देह हताहता कालश्च कंपिरे सर्वे महावाते रिताइव। इस प्रकार जैसे बहुत जोर की आधी आई हो और उसने सभी वृक्षों को गिरा दिया हो, इस प्रकार से लग रहा था केवल श्री बलराम जी के एक बार प्रहार करने मात्र से सभी गिर गए, ऐसा लग रहा था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे महायांधी ने सबको उखाड़ दिया हो, गिरा दिया, ऐसे वे गिर गए। और लीला उत्सृष्ट खर देह हता हता, और खेल खेल में उन्होंने गधा के शरीर को फेंका था, खेल खेल में लीलया, बहुत जोर लगा करके श्री बलराम जी नहीं फेंके थे, जैसे वो कोई साधारण गेंदा फेंक रहा हूं वैसे उठाकर फेंक दिया और सब वृक्ष धराशायी गिर गए। तो सुखदेव महाराज परीक्षित इस लीला को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि वाह ऐसी अद्भुत लीला। तो सुदेव गोस्वामी कहते हैं नैत चित्रम भगवती ह्यनंते जगदीश्वर, जगत के नियामक अपरिछिन्न छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण श्री बलराम जी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। उत प्रोतम इदम जस्मिन तंतु स्वंग जथापट, ये सारा विश्व जिनके भीतर है, जैसे वस्त्र एक विशाल वस्त्र में एक छोटा सा सूत ओतप्रोत है, उस तरह से जिनके भीतर ये सारा जगत ओतप्रोत है, ऐसे भगवान बलराम जी के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये तो बिल्कुल सामान्य बात है। इस तरह से एक मृतक गधा के द्वारा ये सारे तृण राजों को गिरा, तो जब उसके संबंधियों ने परिवार के लोगों ने सुना कि हमारा स्वामी मारा गया, तो वे जितने थे सब गधा के रूप में थे, तो वे अब बड़े वेग से सब दौड़े एक साथ, इसके मन के बाद एक साथ दौड़े कृष्ण बलराम को मारने के लिए। तथा कृष्णम च रामम च ज्ञातयो धेनुकस्य कुष्ठारो अभद्रवन सर्वे संबंध हत बांधवा। तो आते थे तो कोई हथियार लेकर नहीं आते थे, अस्त्र लेकर नहीं आते थे, उनके पास वही दुलत्ती अस्त्र था, वो आते थे और फिर करके रेप करके मारते थे दुलत्ती। तो श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी वह लीला किए, तो वो भी अब पैर पकड़ कर वही लीला करना चालू किए। तो जितने गधे आते थे वो उसी तरह से प्रहार करते थे और उनके पैर को पकड़ कर ये दोनों भाई अब लीला कर रहे, आते थे घुमा घुमा करके फेंकते जाते थे, फेंकते जाते थे, पूरा तालबन मृतक गद्धों के शरीर से भर गया, पूरा विचित्र लीला हुई। तथा कृष्णम च रामम च ज्ञातयो धेनुकस्य कुष्ठारो अभ्यद्रवन। तो सभी आते थे, तांस ताना पत्तः कृष्ण रामश्च निर्पलीलया गृहीत पश्चात चरणन प्राहिरो तृण राजसु। वे दोनों भाई उसी तरह से जैसे पहले लीला किए थे बलराम, उसी तरह से पैर पकड़ पकड़ कर घुमा घुमा करके और तृण राजसु तृण राजों पर मतलब ताल वृक्षों पर पटकते थे। गृहित पश्चात चरण जिनके चरण कृष्ण बलराम द्वारा पकड़े गए थे। सारा जगत भगवान का चरण पकड़ता है और भगवान इन खलों का चरण पकड़ पकड़ करके मार रहे हैं। ये चरण पकड़ कर घुमाने की एक अपनी लीला है जो ताल वन में हुई थी। तो फल प्रकर संकीर्णम दैत्य देहर गतास भी रराज भू सतालाग्रे घने रिवन नभस्तल। उदय गोस्वामी उस ताल वन का चित्र खींच रहे हैं कि कैसा लग रहा था ताल वन। एक तो बहुत मात्रा में फल गिरे थे और बीच बीच में दैत्यों के मरे हुए शरीर पड़े थे। गद्दा सब काले काले रंग के गद्दा थे, सभी काले रंग के गद्दा थे। इसलिए वह भूमि ऐसी सुंदर लग रही थी जैसे काले बादलों से घिरा हुआ आकाश सुशोभित। इस तरह से वो भूमि पट गई। रराज भू, वो भूमि बहुत सुंदर लग रही। सताला सतालाग्रही, तालों के अग्र भाग से। अच्छा, एक और ध्यान देने की बात है, कोई भी वृक्ष उखड़ा नहीं था। उखड़ा का मतलब जड़ से नहीं उखड़ा था। इतना वेग से भगवान बलराम जी ने मारा और कितने कि वो वृक्ष टूट जाते थे और अग्र भाग फिर दूसरे अग्र भाग पर गिरता था तो वो भी तोड़ता जाता था। तोड़ते हुए सब गिर गए, इसीलिए यहां पर लिखा गया तालाग्रही। ताल के अग्र भागों से पृथ्वी पट गई और फलों से, तो वृक्षों के अग्र भाग से, फलों से और मृतक दैत्यों के देह से वो भूमि भरकर ऐसी सुंदर लग रही थी जैसे घनई नभस्तलम, जैसे बादलों से आकाश मंडल सुशोभित हो। इस तरह से भूमि सुशोभित हो रही। तयोस्तत्सु महत् कर्म निशम्य विवधादय मुमुचुः पुष्प वर्षाणि चक्रुर्वाद्यानि तुष्टु। तयो श्री कृष्ण और श्री राम के उस सुमहान कर्म को देखकर देवता जन फूल बरसाने लगे। वे बहुत डरते थे धनुकासुर से और उसके परिवार से देवता लोग, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि ये सब मारे गए तो मुमुचुः पुष्प वर्षाणि फूलों की वर्षा करने लगे। चक्रुर्वाद्यानि तुष्ट, बाजा बजाने लगे और स्तुति करने लगे। बहुत तरह के बाजे बजाने लगे, जय जयकार करने लगे और फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं के लोक में फूल बहुत भरा हुआ है, जहां भी कोई अवसर मिलता है देवता लोग फूल बरसाते। इस बार जो मथुरा में रथ यात्रा हुई वहां फूलों की अद्भुत वर्षा हुई। हम समझते हैं संसार में अब तक किसी भी रथ यात्रा में इतना फूल नहीं बरसा होगा, पूरा रोड फूल से भरता जाता था। क्योंकि मथुरा के लोगों की ये भावना थी कि कृष्ण बलराम हमारे घर के हार वे आ रहे हैं रथ पर चढ़कर, बहुत स्वागत किए। इतनी सुंदर रथ यात्रा में कहीं नहीं देखा न सुना, इतना फूल बरसा था। देवताओं के लोक में फूल ही फूल है चारों तरफ, वे विमानों पर लाद लाद कर लाते हैं और बरसाने लगते हैं। बरसाने लगे अथ ताल फड़ाल न्यादन मनुष्या गत साधसा तृणम च पश्वश्चेरु हत धेनु कानने। इसके बाद वहां के मनुष्य मतलब वन में रहने वाले कोल भील या अंत्यर्ष, उनका भय दूर हो गया और वे लोग आ करके फल सब गिरे और धेनुक मर गया, कोई भय नहीं रहा। गत साधोसा, अब उनका भय दूर हो गया और सब आया करके फल ढोने लगे खाने लगे, लेकिन भगवान के सखा वे एक भी फल नहीं खाए क्योंकि सब जगह मरे हुए गधे पड़े थे तो वे खाए नहीं। अब वह लाश पड़ी हुई गधों की और उनके शरीर से सटा हुआ फल कोई नहीं खाया। तो गए थे खाने के लिए लेकिन कोई नहीं खाए। भगवान के भक्त जहां रहा खाए नहीं चलते। यद्यपि वे कृष्ण से कहे थे कि चलो बहुत सुगंधित और स्वाद फल है खाएंगे, लेकिन सब जगह में वे गए पड़े हैं तो क्यों खाएं। सामान्य कोई वैष्णव हो जाता है, खान पान में इतना नियम पालन करता है, तो भगवान के पार्षदों का कहना ही क्या है, वे क्यों खाए। वे नहीं खाए, दूसरे मनुष्य दूसरे लोग खाने भाई। और त्रिणम च पशव चेर, और तब गऊओं को हाँक करके लाया गया और वे गऊएं खूब आनंद के साथ घास चरने लगे। पशु घास चरने लगे और मनुष्य आसपास के उनको पता लगा कि जनकासुर मारा गया परिवार के साथ, वे सब आए आर के फल खाने लगे और गाड़ियों पर लाद लाद कर घर ले गए। इस तरह फल सबको भगवान ने सुलभ कराया। इस प्रकार यह एक दिन की लीला है और पुनः प्रतिदिन की लीला का वर्णन कर रहे हैं। अब वन से लौटने की लीला वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन स्तूयमानोनुगैर्गोपैः साग्रजो ब्रजमार्जत एवं सन्देन दिनांकस्य धेनुकवध लीलामपि समाहृत्य प्रथमं गोचारण दिन संध्या लीलामपि यथा युक्तमित्थं गया इति तद्दिन संध्या लीलाम आह। किसी भिन्न दिन में धेनुकवध की लीला हुई थी, लेकिन प्रथम दिन जब कृष्ण गोचारण करने गए तो गोचारण करने के बाद शाम को वह किस तरह घर लौट रहे हैं उस लीला का वर्णन करते हैं। प्रथम दिन की लीला। साग्रज अपने अग्रज श्री राम के साथ और अनुगह गोपी मानो अपने अनुगामी सखाओं के द्वारा गीत कीर्ति कमल पत्राक्ष कमल के समान सुंदर नेत्र वाले श्री कृष्ण ब्रजम आब्रजत ब्रज में लौटे। उन्हें श्रवण कीर्तन श्री कृष्ण के विषय में सुनना और बोलना यह जीव को पवित्र करने वाला है। इसको कहते हैं पुण्य श्रवण कीर्तन। जिनका श्रवण जिनका कीर्तन जीव को पवित्र कर देता है। ऐसे प्रभु के जस को गोप सखा गा रहे थे और श्री राम जी के साथ गऊओं को आगे आगे करके वन से लौट रहे हैं। वन से लौटने की लीला को साझी लीला कहते हैं। सया के समय श्री कृष्ण लौट रहे हैं। दिन भर गऊए चरा के कुछ थके हुए हैं, लेकिन फिर भी वृंदावन के वातावरण से सुंदर वातावरण से उनकी थकान का अनुभव बिल्कुल नहीं। गऊओं के चल से गऊओं के रज से उनके काले काले बल छिड़ हो गए, काले काले अलके भूषित हो गए और नाते हुए गाते हुए ब्रज में प्रवेश कर। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। तम गो रजस्छुरित कुंतल वध बरह वन्या प्रसून रुचे चारु धाम वेणु क्वरं तमनुगैरनु गीत कीर्ति गोप्यो दुदीक्षित दृशोभ्य गबन समेतः। विशेष रूप से श्री कुमारियों के सौभाग्य का वर्णन दर्शन कर रहे हैं श्री कृष्ण के व्रत प्रत्यावर्तन लीला द्वारा। दिदृक्षित दृश समेता गोप्य जो दिन भर श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से मूर्छित सी हो गई थी, उन्हें देखने की बड़ी लालसा थी कृष्ण को, ऐसी गोपियां समेता एक दूसरे से मिल करके कृष्ण को देखने आई। कृष्ण के लौटने का समय हो गया है तो समेता गोपियां एक दूसरे को सूचना देती चलो सखी अब वो आने वाले हैं, अब देखा है देखना है। दिन भर कृष्ण की चर्चा कर रही, उनका चिंतन कर रही और उनके आने पर उनका सुंदर खादिन देखने के लिए तैयार हो। गुरु में आपस में कभी भी ईर्ष्या नहीं है, एक दूसरे को बुलाती हैं, चलो देखे वो यहाँ आ गए यहाँ आ गए। श्री कृष्ण के क्या सौंदर्य है, गो रजस छुरित कुंतल बद्ध बरा पुण्य प्रसून रुचि रे चारु हास गो जो भी छुरसु अलकेश गोरज से व्याप्त है अलक और उन अलों में ग्रथित है मयूर पंख और इसके साथ ही साथ वन में प्रसून वन में खिले हुए फूल सब कारण जिनका दर्शन बड़ा सुंदर लग रहा है और जो बहुत मधुर हंस रहे हैं जिनका हास्य बड़ा मधुर है और जिनका यह दर्शन बहुत मधुर है, ऐसे श्री कृष्ण को गोपियों ने देखा। दिन कोणंतम वेणु वेणु वादयंतम, लौटते समय वेणु वादन का एक विशेष अर्थ है कि बहुत दूर से ही अपनी वेणु ध्वनि से गोपियों के या नंद जसवादी के दुख को श्री कृष्ण दूर करना चाहते हैं। वेणु बजाते हुए है और उन अनुगामी सखाजन उनकी कीर्तन गान कर रहे हैं, इस तरह श्री कृष्ण लौट रहे हैं। यह श्री कृष्ण की वन लौटने की लीला बहुत ये है वैष्णव में, क्योंकि दिन भर की विरह ज्वाला को शांत करते हुए लौट रहे हैं। हम लोग पहले पढ़े हिंदी भाषा में एक खान कवि हो गए, उन्होंने इस लीला का वर्णन किया है, इस श्लोक का यथार्थ अनुवाद किया है। गुरा जब विराज भाल लह लही बनमाल आगे गैया पाते ग्वाल गावे मृदानरी। गोरज राय भाल, श्री कृष्ण के काली काली अल्पों पर गोरज विराज रहा, जब गौएं चलती हैं भूमि पर तो उनके खुर से रज उड़ती है। श्री कृष्ण आते थे आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे आगे गौएं चलती थी तो स्वाभाविक ही उनके खुर से उड़ी हुई रज श्री कृष्ण के मस्तक पर पड़े और उस रज को श्री कृष्ण बहुत पवित्र मान करके धारण करते थे। गाय का खुर बहुत पवित्र है, उसके खुर से सटा हुआ रज भी बहुत पवित्र माना है। यह है शोभा भगवान की, दिन भर परिश्रम करके लौट रहे हैं घर। तो गोपियां आपस में कहते हैं चलो चलो प्रसिद्ध कदम वृक्ष के पास निकट वे आ रहे हैं, आटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी रे, चलो अटारी पर चढ़ करके देखो पीत पट की फहरानी, कैसा पीत पट लहरा रहा। वो दिन भर की ज्वाला बुझा रहे हैं, रस बरसा रहे हैं, देखो देखो आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। तो बड़ा सुंदर वर्णन है, ये तो केवल हिंदी भाषा वाले ही आनंद दे सकते हैं। बड़े बड़े कवियों ने अपनी वाणी को सफल बनाने की इस लीला का वर्णन करके, और कई भक्तों को भगवान के इस रूप का दर्शन होता था उनके समय। एक वृंदावन में एक सिद्ध संत थे, अब नहीं है, बाल कृष्णदास जी महाराज, नंदगांव में एक गुफा रहते थे और उनको इस लीला का दर्शन हुआ था। श्री कृष्ण लौटे थे, लौटते थे नंदगांव में, तो उन्हें लीला का दर्शन हुआ था। ये सब जगह प्रसिद्ध बात। तो श्री कृष्ण लौट रहे हैं गोपियों के दिन भर की तपन बुलाते हुए। पिपा मुकुंद मुख सारघमक्ष भृंगई तपम जहुर विरहजम ब्रजजो सितहनी तत्सत कृतिम समधिगम निवेश गोष्ठम सदृढ़ हास विनयम जगपांग मोक्षम। इसके बाद क्या हुआ, तपस्य जग वृत्तम तदा मुकुंद के मुख सारघ को मुख पराग को अपने नेत्र रूपी भृंगों से पीकर गोपियों ने दिन भर की विरह ज्वाला को शांत कर। यह है प्रेम। इस संसार में किसको केवल देख करके विरह ज्वाला शांत नहीं होती, गोपियां श्री कृष्ण के मुख को देख करके अपने नेत्र भृंगों से पी करके और दिन भर की विरह ज्वाला शांत कर ली, वे सुखी हो गए। और तब सत्कृतिम समधि गम्य, और भगवान श्री कृष्ण अपने नेत्रों से मुस्कान से गोपियों का स्वागत करके और तब अपने घर में प्रवेश किए। प्रत्येक गोपी पर भगवान श्री कृष्ण मित्र से कटाक्ष से हास्य द्वारा देख रहे हैं। यह है स्वागत सत्कृति सत्कार। गोपियां इन पर देख रही हैं, कृष्ण गोपियों पर देखे और इस तरह से उनका दुख दूर करें। और वह श्री कृष्ण का दर्शन अब गोपियों के लिए रात भर का पाथेय था। फिर वे यही सोचते थे कि कब सूर्य उगेगा, कब सूर्य उगेगा, कृष्ण बछड़ों को घेरने आएंगे, गाय दुहवाएंगे जिससे हम उनको देखेंगे। रात्रि में फिर उनके लिए दुर्लभ हो जाता था, ये अपने घर में माँ चौदा के पास सो जाते थे, छोटे छोटे बच्चे थके मांदे सो जाते। तो वे रात भर तारों को गिनती होती थी, कब कब दिन होगा, कब दिन होगा, और दिन होता था तो कब शाम होगी, कब शाम होगी, बस यही उनका उनका भाव रहता। सूर्य गाली देती थी, क्या पंगू हो गया, क्या कि रथ का चक्का टूट गया, क्यों नहीं जल्दी डूबने जा रहा है, क्यों नहीं शाम जल्दी हो रही, किया और शाम होते ही फिर सूरज को गाली, क्या हो गया, क्यों ले कर रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं दे रहा होगा। सर्वदा कृष्ण भावना भाव इसी भावना में रहती थी। इसलिए गोस्वामी अवसर पाकर श्री गोपीजनों का विशेष वर्णन करते। अब श्री कृष्ण की विश्राम लीला सुनिए। दिन भर के थके मांदे प्रथम दिन गाय चराने गए, ऐसे प्रतिदिन की लीला होती थी। तयोर जोड़ा रोहिण्यो पुत्रयो पुत्र वत्सले जथा कामम धरालम जधत्ताम परमाशिष। घर पर आने पर दोनों माताएं रोहिणी और यशोदा किस प्रकार की बलराम की सेवा कर रही है ये वर्णन किया जा रहा है। तयो पुत्रयो हो अपने पुत्रों के घर आने पर जथा कामम, वे जो वस्तु पसंद करते थे खाने के लिए वे वस्तु तैयार करके रखी थी, क्योंकि माँ यशोदा या रोहिणी जानती थी कि कृष्ण को क्या रुचिकर क्या खा चाहता और जथा काल और क्या खिलाना चाहिए, शाम के साथ क्या खिलाना चाहिए, सवेरे क्या खिलाना चाहिए, रात में क्या खिलाना चाहिए, ये सब मालूम था माँ यशोदा को रोहिणी। श्री कृष्ण वर्णन की रुचि के साथ और काल के साथ प्रदोष वेला में शाम के समय कौन सा भोजन लेना चाहिए ये सब जानती थी। ऐसा नहीं कोई भी भोजन किसी भी बेला में बस खाओ 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 साहब, हमेशा खाना खाना है। आजकल के मनुष्य कहीं भी चलते रास्ते में भी खाना चल पड़े, बस में ट्रेन में पैदल ऑफिस में घर में फोन करते सुनते रहते हैं और कान पास फोन रहा हलो हलो और हमन भी करते शास्त्र के और वैद्य के अनुसार प्रीत है स्वास्थ्य के लिए। तो जथा काम जथा काल, काम मने इच्छा। कृष्ण बलराम जो कुछ रुचिकर था वो भक्ष्य पेय लेह्य चोष्य चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद, चार प्रकार के प्रसाद हम लोग खाते हैं तो भगवान कितने प्रकार का खाते हैं तो भाविक समझा सकता है। उन्हीं का प्रसाद हम लोग खाते हैं। जथा काल के अनुसार रुचि के परम आशीष, परम आशीष मतलब वो जो सुंदर भक्त है पसंद करते थे और जो बड़ा पसंद करते उनके लिए मुझे सोदा और दिन भर यही जुटाती थी। राम को ये पसंद पड़ता है, कृष्ण को ये पसंद पड़ता है, रंग का कपड़ा पहनता है ऐसा कपड़ा चाह रहा है, कपड़ों को साफ करना रखना ढंग से। और आते ही सबसे पहले ऐसे ही कि आते ही बस खाना दे दो, खुला नहीं कि हाथ पैर नहीं धोए, बस ऐसे ही जुक्त मुख में अन्न डालने लगे। आने के बाद उन दोनों भाई को सीधे स्नान के ले जाए, दोनों माताएं अपने पुत्रों को स्नान कराती थी, मज्जन उन्मर्द ना दे, सबसे पहले स्नान कराती थी, इसके बाद तेल मर्दन करती उबटन लगाती थी, स्नान आने के बाद उबटन लगाती थी, उबटन लगाने के बाद फिर स्नान करती, दो दो बार अच्छी तरह स्नान। केवल जल से ऐसा नहीं होता है, भागवत में लिखा है कलयुग वर्णन में कि लोग कलयुग में केवल पानी से स्नान करेंगे, यह आश्चर्य है। और किस चीज से स्नान किया जाता है, तेल से स्नान किया जाता है, चंदन से स्नान किया जाता है, कई द्रव्य शरीर में लगा करके स्नान किया जाता है, लेकिन कलयुग में केवल पानी से नहा लिए वही काफी हो गया। कुछ लोग तो उसमें ही नहाते हैं, पानी से भी डरते हैं ये दशा हो गई। पहले कृष्ण बलराम को स्नान कराया जाता था, तदुपरांत इसके अतिर स्नान अंग को पोछ करके वहां से सुंदर वस्त्र धारण नीविन वसित्वा रुचिराम और सुंदर धोती पहनाई जाती और दिव्य स्रग्रंडित हो, फिर दिव्य माला और गंध चंदन आदि केसर कस्तूरी आदि उनको लगाया जाता, ये पहन करके सज करके तब भोजन परसा हुआ खाते। नहाना बहुत आवश्यक है खाने से पहले, छोटे छोटे बच्चे भी नहा करके खा रहे हैं, दो दो बार सवेरे नहा कर गए और उधर से लौटने के बाद फिर नहा। आश्चर्य है कलयुग में बड़े बूढ़े लोग भी दो बार स्नान नहीं करते, एक बार किसी तरह नहा लिए उधर से लौटे तो बिना नहाए धोए खाए सो गए। तो सीखना चाहिए भगवान की लीलाओं से। तो नहाए और जननी उपहृतम प्राश्य स्वादु अन्नम उपलालित, इसके बाद वे द्वारा परसे हुए भोजन को खाते हैं दोनों भाई। एक साथ सखाऊन्नम भोग प्रसाद उपलालित और भोजन करने के बाद उनका लालन करती हैं माताएं, पूछती हैं बेटा दिन भर कैसे घूम रहे थे, क्या क्या किए, कहीं खोह में गिरिकंदर में तो नहीं गए थे, कैसा लगा, दूर तो नहीं जाते थे, धूप तो नहीं लगी, कैसे हो, तो चुनती थी गोद में लेकर के सहलाती थी और इस तरह धीरे धीरे नींद आने लगी और धीरे धीरे नींद आने लगी। तब संविश वर्ष सज्जायाम श्रेष्ठ सज्जा पर सुखम से सुख, उसके बाद दोनों भाई सो। इस तरह माताओं के वात्सल्य का वर्णन किया गया। भगवान के कई प्रकार के परिकर हैं, गोपियां हैं, सखा हैं, माता पिता हैं, सबको यह सौभाग्य मिल रहा है उनकी सेवा। उपलालन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, खिलाते समय भी लालन करती हैं, सोने से पहले लालन करती हैं। और कृष्ण बलराम को गोद में ले करके और कहते सो जाओ, नहीं सोते हैं, दोनों सोने का उपक्रम करती हैं, हमारे सोने पर सो जाए, तो लालन करती हैं, कुछ मधुर गीत गाती हैं कि सो जाए सो जाए। और श्री कृष्ण बीच बीच में सोने में भी माता से कहता अब समय हो गया, आप वन में जा रहे हैं कह चल, अभी सोए 10 मिनट के बाद कहता अब टाइम हो गया आप जा रहे हैं कह चल, अरे नहीं नहीं सो जाए। इस तरह से ये प्रतिदिन घटना होती थी, सोचा अभी सोचा सोचा जगोगे तो कोई जीव आ जाएगा, तुमको काटेगा, बिल्ली आएगी, सो सो। एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चरह क्वचित जयो रामृते राजन कालिंदी सुखदेव। तब लीला बदल रही है इसलिए मैं यहीं बंद करता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रोज लीला करते थे, रोज जाने की आने की खाने की सोने की, यह भगवान की लीला है। अब इसके बाद हम लोग काली उद्धार की लीला सुनेंगे बाद में। हरे कृष्ण जय श्री। पंखा थोड़ा कम होना चाहिए, आवाज आ रही है। एवं स भगवान कृष्ण वृंदावन चरह क्वचित ययौ राममृते राजन् कालिन्दीं सखिभिर्वृतः अथ गावश्च गोपाश्च निदाघा तपपीडितः दुष्टं जलं पपुस्तस्यः त्रिशार्ता विषदूषितम् एवं। इस प्रकार सह लीला का और उस लीला को समाप्त कर अब उसी वर्ष में भगवान श्री कृष्ण के गोचारण वर्ष के ग्रीष्म ऋतु में एक लीला हुई थी उसको कह रहे हैं। भगवान कृष्ण छठे वर्ष में गोचारण लीला चालू किए और ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी को चालू किए जिसे गोपाष्टमी भी कहा जाता है। तो उसी वर्ष में जो गर्मी का महीना पड़ता था उस गर्मी के महीने की यह लीला है, कालीय दमन की लीला, तो उसको प्रारंभ कर रहे हैं। क्वचित किसी दिन रामम रीते श्री राम के बिना, श्री बलराम जी को साथ में लिए बिना ही श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ कालिंदीम जयौ कालिंदी के तट पर गए। श्री जमुना जी को कालिंदी कहा जाता है क्योंकि वो कलिंद की पुत्री हैं। कलिंद का अर्थ है कलिंद, द मतलब द्यति खंडयति, जो कलह को समाप्त करे या कलयुग के प्रभाव को समाप्त करे उसको कलिंद कहते हैं। और ऐसे कलिंद की पुत्री होने से यमुना जी को कालिंदी कहा जाता है। तो कालिंदी बहुत पावन नदी है, भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि। कालिंदी के दोनों तटों पर सब मिलाकर मुख्य रूप से 12 वन हैं, द्वादश कानन, और इन वनों में भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं। तो जमुना के पूर्वी तट पर 5 वन हैं और पश्चिमी तट पर 7 वन हैं। ब्रज घूमने वाले लोग इस बात को जानते हैं, व्यास भी हैं, उन वनों के नाम हैं और कुछ तो वास्तव में वन हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय में वो पूरा प्रदेश वनों से भरा था, जंगलों से भरा था। उनकी समग्र लीलाओं में सबसे मधुरतम लीलाएं कालिंदी के तट पर बसे हुए द्वादश वनों में हुई है। द्वादश कानन, द्वादश वन। तो कालिंदी का बहुत बड़ा स्थान है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में, और कालिंदी भगवान की प्रिया है। परंतु दैव योग से कालिंदी के भीतर एक बहुत भयानक सर्प आ गया था जिसका नाम था कालिये। कालिये का नाम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में आया है। तल अतल बीतल सुतल तलातल महातल, ये महातल में रहता था। महातल में ही एक रमणक द्वीप है, उसमें ये रहता था। वो भगवान ने नागों के रहने का स्थान बनाया है। बड़े भयंकर नाग, एक फण वाले, हजार फण वाले, इस तरह के बहुत से सर्प रहते हैं और उनके फणों पर मणियां रहती हैं। उन मणियों से ही उस लोक का अंधकार नष्ट होता रहता है। तो कालिये विश्व प्रसिद्ध, वेद प्रसिद्ध एक सर्प है, वाज भी है। भगवान ने उसका वध नहीं किया, केवल वृंदावन से निर्वासित किया। तो वह आ गया था, कालिंदी के भीतर रह रहा था। इसे कालिंदी की बड़ी दुर्दशा थी, सारा पानी विषैला हो गया था उसके रहने से। तो भगवान उसको शुद्ध करना चाहते थे। तो एक दिन श्री राम को साथ नहीं लिए। भगवान श्री कृष्ण ने आग्रह करके श्री बलराम जी को कहा कि आप आज ब्रज में रहिए, घर पर रहिए, क्योंकि मैं उधर जा रहा हूँ, इधर कोई खतरा आ जाएगा, कोई असुर आ जाएगा तो चेक कीजिएगा, आप इधर रह जाइए और मैं जा रहा। ये प्रश्न होगा कि भगवान ने श्री बलराम जी को लिया क्यों नहीं साथ में। इसके दो कारण हैं। भगवान ने ये सोचा कि जब मैं काली की भुजाओं में जकड़ा जाऊंगा तो सभी ब्रजवासी मुझे देख कर काली हरद में कूद जाएंगे, तो उनको बचाने के लिए श्री बलराम को रहना चाहिए। और दूसरा कारण ये था कि भगवान कृष्ण ने सोचा कि जब मैं उत्तुंग कदम्ब पर चढ़ करके जमुना में कूदना चाहूंगा तो अतिशय स्नेह होने के कारण, प्रेम होने के कारण मेरे बड़े भाई हमको कूदने नहीं देंगे, इसलिए भी नहीं जाने दिए। ब्रजवासियों के जीवन की रक्षा करने के लिए और कृष्ण की लीला निर्बाध रूप से हो सके, काली हरद में विहार हो सके, इसके लिए भगवान ने उनको रोक दिया और अन्य सखाओं के साथ गए। कभी भी कालिये हरद के पास गौए नहीं जाती थी, कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानबूझकर के उधर ही गए कालिये हरद के पास। तो और अकस्मात, गर्मी का महीना था ही, अकस्मात इतनी धूप हुई, इसको निदाघ कहते हैं संस्कृत में, निदाघ, गर्मी और आतप, धूप दोनों हुई, प्रचंड गर्मी, जो पसीना निकलने लगा, तर बतर शरीर हो गया गौओं का और गोपों का, और ऊपर सूरज का प्रकाश लग रहा था, बहुत जोर की प्यास लग गई। यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवत राज्य में, अप्राकृत जगत में इस प्रकार की प्यास या इस प्रकार की गर्मी यह अस्वाभाविक है, परंतु भगवान श्री कृष्ण कालिये को निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस भूख की सृष्टि किया और प्यास की सृष्टि किया। अन्यथा वृंदावन गर्मी के ऋतु में भी बसंत जैसा वातावरण रहता है, वहाँ एक अकस्मात निदाघ हो नहीं सकता। लेकिन भगवान की ऐसी प्रेरणा थी, वे लीला करना चाहते थे। वहां गौएं गई और उन्हें प्यास लग गई, घाम से व्याकुल हो गई, और गोप भी कृष्ण थोड़ा सा पीछे थे जानबूझ करके, वे लोग गए और जाते ही बस पानी 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 पिए। जेम ही एक दो घूट पिए काली हरद का पानी, जहां पिए वहीं फड़फड़ा कर गिर कर मर गए सभी लोग। मर गए इसे ये और नहीं समझना चाहिए कि वास्तव में उनके प्राण निकल गए, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अप्राकृत जगत में देह देही का भेद नहीं है। वो देह मर ही नहीं सकता है। हम लोगों का देह इसे मरता है कि आत्मा इसमें चेतन है, आत्मा से को छोड़ करके चला जाता है, तब यह शरीर मृतक कहलाता है। लेकिन अप्राकृत जगत में देह देही का भेद नहीं है, वहां मरने का कोई प्रश्न नहीं। लेकिन भगवान की यो माया ने, स्वरूप शक्ति ने ऐसा वातावरण प्रस्तुत कर दिया। गावश्च गोपाश्च निदाघा तप पीड़िता दुष्टम जलम पुस्तस्या त्रिशार्ता विशदोषितम। गावश्च गोपाश्च, गौएं और गो निदाघ के आतप से पीड़ित थे और त्रिशार्त हो गए, प्यास से व्याकुल हो गए। विष दुष्टम जलम पकु, विषितम जलम को दुष्टम जलम कहा है। दुष्टम जलम का अर्थ है विषाक्त, विषाक्त जल, विष से भरा हुआ। और अन्य जगह के पानी से हरद का पानी बहुत अधिक काला हो गया था विष के कारण, और खोलता रहता, आगे वर्णन आएगा। ये प्रश्न होता है कि क्यों पिए, पी गए? ये तो प्रसिद्ध बात थी कि काली हद दह का पानी खोलता रहता है, कथित उबलता रहता है विष की ज्वाला से। तो फिर उधर गए क्यों? आसपास के वृक्ष झुलस गए थे, जल गए थे, ऊपर उड़ने वाले पक्षी उसमें झुलस गिर जाते थे, ये क्यों पिए? विषमस्तद उपस्पृश्य दैवो पहत चेत स, दैव ने उनके चित्त को बुद्धि को नष्ट कर दिया था। यहाँ दैव का अर्थ है कृष्ण की इच्छा, देव का अर्थ है कृष्ण, और दैव का अर्थ है कृष्ण की इच्छा। देव की इच्छा को दैव कहते हैं। सामान्यतया दैव का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का कर्म फल, उसको दैव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दैव का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की लीला, लीला वैभव। वे चाहते थे काली अर्पण करना है, श्री जमुना को शुद्ध करना है, इसलिए गोपों की और गौओं की मति नष्ट हो गए। इस विषय में मत अनुसंधान नहीं रहा कि काली दह पान विषैला है, हमें नहीं पीना चाहिए, अतिशय प्यास के कारण। इस श्लोक में देव गोस्वामी महाराज परीक्षित के लिए कुरुद्वह संबोधन कर, हे कुरुकुल तिलक, तुमको इसका अनुभव है, ये संबोधन, तुम भी अतिशय प्यास के कारण मुनि के गले में सांप डाल दिए थे। जब बहुत जोर की भूख प्यास लग जाती है तो वे नष्ट हो जाता है। अब उस समय ये ध्यान नहीं रहा कि ये विषैला जल है, मधुर जल है, बस जल चाहिए और पीते ही मर गए। तो विषाम्बस तदुपस्पृश्य निपेतु, निपेतु का नितराम हेतु, गिर गए। जैसे फूल से कटा हुआ वृक्ष गिर जाता है, वैसे वे सब गिर गए। जल पीते नेतु विश्व बिना पा के होकर के असव, उनके प्राण अवगत हो गए और सभी एक साथ। सर्वे शब्द का प्रयोग सुखदेव को सकते, ऐसा नहीं हुआ कि बारी बारी से विष की पी करके और सभी एक साथ पी लिए। यदि ऐसा हुआ होता कि कुछ दो चार व्यक्ति पहले पी करके मरे होते तो अन्य लोग देख करके सजग हो जाते कि वो जमुना का विषैला जल पी कर छटपटा करके मर गए तो नहीं पिएंगे। भगवान की ऐसी लीला थी कि सभी एक साथ पिए और एक साथ निष्प्राण होकर निपेतु गिर गए। कहाँ? सलिलांत, सलिल अंत में, जल के निकट, झांकना का विषैला जल था निकट में, वहीं सब गिर गए। गौए और गो सभी, गावश्च गोपाश्च, अथवा कुरुद्वह संबोधन से सांत्वना दे रहे हैं कि महाराज आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, ये सब फिर जीवित हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण थोड़ा पीछे थे, तो उनकी इच्छा थी कि ऐसी लीला हो, तो वीक्षतान वै तथा भूतान कृष्णो जोगेश्वरेश्वर इच्छया मृत वर्षिण्या स्वनाथान समजीवयत। भगवान श्री कृष्ण ने देखा तथा भूतान तान अपने प्रिय गोपों को गणान वीक्ष, देखे कि ये सब निष्प्राण हो गए गिर गए। तो भगवान श्री कृष्ण पहले बहुत खिन्न हुए क्योंकि भगवान के सामने ही इनका पूरा परिवार और इनका धन इनकी गौएं सब समाप्त हो गई। तो नर नाट्य कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। एक बार देखने के बाद हा निकला इनके मुंह से कि हाय हमारे सखा और हमारा गोधन सब समाप्त हो गया। तो भगवान ने को इतना दुख हुआ यह देख करके उनके आंखों से आंसू चू गए और गोपों को पकड़ करके या गौओं को पकड़ करके वे रोए और उनके आंखों से आंसू जो गिरे वे अमृत हैं, स्पिरिचुअल आंसू, और उन आंसुओं के स्पर्श से वे सभी जी गए। अथवा इच्छया मृत वर्ष निर्या स्वनाथान समजीवया, अपने अनुग्रह भरी दृष्टि से परम स्नेह से देख देख करके सबको जीवित कर दी। अच्छा, ये जीवित करना भी एक ही साथ है, एक साथ सबको जीवित कर दिया। जो भी हो, कुछ टीकाकार ऐसा कहते हैं कि भगवान रोए और उनके आंसू जो नेत्रों से गिरे उससे वे जीवित हो गए। यदि भगवान अपने सखाओं के लिए रोवे या गौओं के लिए रोवे तो उनकी लीला के सर्वथा अनुकूल है, यह कोई दोष नहीं, यह भगवान के लीला का सौंदर्य है। इस तरह अपने बंधुओं के लिए रोना यह भगवान का स्वभाव है। अथवा यह अर्थ है कि स्नेह से देख दिए सब जी गए, सम जीवयत जी गए, ये भी कोई ग्लानि नहीं रह गई, कोई थकावट नहीं। ऐसा मान लीजिए कोई व्यक्ति बीज खाए और कदाचित कोई महावैद्य सदवैद्य उसको जीवित करे तो फिर भी जीवित होने के बाद भी विष का असर रहेगा, उस शरीर में कमजोरी रहेगी और रिवाइव करने में कई दिन लग सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो उनको जीवित किया तो उन पर कोई भी विष का असर नहीं था, पहले की तरह प्रसन्न स्वस्थ, कोई क्लांति नहीं थी, थकावट नहीं थी, न तो मन में ग्लानी थी, सब इस तरह से जीवित किया। यह कैसे संभव है? क्या कोई दृष्टि मात्र से किसी का विष उतार देगा और भी मरे हुए को? कोई भी डॉक्टर इसमें ऐसा नहीं है जो निष्प्राण व्यक्ति में प्राण डाल दे, ऐसा कहीं नहीं सुना गया। अगर ऐसा संभव होता तो इस जगत के जो बड़े बड़े लोग होते हैं जैसे महात्मा गांधी या और भी बहुत से बड़े बड़े लोग, उनमें प्राण डाल दिया जाता और फिर से इस देश के लिए बहुत भारी भारी काम कर, कोई भी उपाय करके आज तक एक भी व्यक्ति में प्राण नहीं लगे। परंतु भगवान ऐसे समर्थ है कि अपने मरे हुए हजारों सखाओं को और हजारों गौओं को पुनर्जीवन दे दी दृष्टि मात्र से। यह है भगवान की विशेषता, अंगा जर सकल इंद्रियमंद। और इसीलिए इस श्लोक में कृष्ण योगेश्वरेश्वर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, योगेश्वरेश्वर हैं। योगेश्वर का होता है जो समस्त उपायों के नियामक हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसे योगेश्वरों के भी ईश्वर से कृष्ण है, योगेश्वर योगेश्वराणाम ईश्वर। योगेश्वर है भगवान शिव शनकादिक, ये लोग भी संभव को संभव करें, परंतु इनके भी आराध्य, इनके स्वामी भगवान कृष्ण है। इसलिए किसी को केवल देह कर जीवित कर देना यह आश्चर्य बात नहीं, भगवान कृष्ण के लिए कुछ भी आश्चर्य नहीं, देख करके जीवित कर दिए। क्या है कोई संसार में ऐसे डॉक्टर या वैद्य जो केवल देख देखी और उसका जहर लग जाए या कोई रोग ठीक हो जाए? ऐसे कुछ लोग होते हैं
कम से कम को छूना पड़ता है। हमारे गांव पास एक व्यक्ति है, कहीं किसी का हाथ टूट गया हो या मोच आ गई हो, कुछ हो गया हो, तो वो अपने पैर से या हाथ से छू देता है तो ठीक हो जाता है, और कोई उपचार नहीं, तो छू देने से ठीक हो जाता है। तो सामान्य जीव में प्रकार शक्ति है, परंतु वो भी दृष्टि से कुछ नहीं कर सका, छूना पड़ता है। ऐसे भगवान ये देखने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल संकल्प मात्र सारे जगत को मार सकते हैं, जीवित कर सकते हैं, जोगेश्वरेश्वर हैं भगवान। श्रीमद् भागवतम में बहुत सावधानी से कृष्ण कथा कही गई है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर टीका टिप्पणी करने का कोई अवकाश नहीं है, ऐसा वो क्यों ये किए वो किए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान कृष्ण ने गोप माताओं का चीरहरण क्यों किया, चीरहरण के पहले तो लीला है कि वे मरे हुए को जिला दी, इसको क्यों नहीं पूछते हैं ये कैसे हो गया, पूछना ये ना, ये कैसे संभव है। कथाओं के बीच बीच में भगवान के गुण लिखे गए तो उनके क्वालिफिकेशन, तो ये यह एक गुण है योगेश्वरेश्वर, तो इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसी से मंदिर में नियमित है जहाँ चाहिए कि भगवान हम पर देखे, हम पर वे स्नेह भरी दृष्टि देखा करें, हम भी उनको देखते हैं, वे हम पर देखते हैं, तो इस तरह से हमारा शरीर निरोग रहेगा, हमारी बुद्धि रहेगी। इसको भक्ति योग कहते हैं। मंदिरों में भगवान है, वो अर्चा विग्रह है, वो अवतार है, पत्थर मात्र नहीं है। पत्थर मात्र उन लोगों को दिखाई देता है जो केवल चर्म छू से देखते हैं, भीतर की आंख उनके पास नहीं है, ज्ञान चक्षुः नहीं। विमूढ़ा नान उपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुः। भगवान श्री कृष्ण गीता के एक श्लोक में कहते हैं आत्मा के विषय में कि किस तरह आत्मा शरीर छोड़ता है या शरीर में रहता है और कैसे शरीर में रहकर विषयों को भोगता है, इसको विमूढ़ा नान उपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुः। विशेष मूढ़ जन इसको नहीं जान पाते हैं, ज्ञान चक्षु जान जाते हैं, जिनके पास ज्ञान के नेत्र हैं वे इसको देखते हैं आत्मा। जहां तक विमुद्धा का सवाल है, भगवत गीता के अनुसार जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं कि आत्मा एक देह से दूसरे देह में जाता है, वे तो ज्ञान चक्षुषा है, और जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं आत्मा का, वो सब विमुद्धा है, निश्चित विशेष मुद्दा, टोटली गधा है वास्तव। कोई भी जो पुनर्जन्म आत्मा का नहीं मानता, आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, तो भगवान की दृष्टि में वो गधा है, विमुद्धा। आजकल लोग बड़े शौक से कहा करते हैं हम पुनर्जन्म को नहीं मानते, हम ये नहीं मानते, हम कर्म फल नहीं मानते, तुम कुछ भी मानो या ना मानो, लेकिन तुमको ईश्वर एक क्वालिफिकेशन दे रहा है विमुद्धा, विशेषण मूड, विशेष रूप से मूड गधा। बड़े गर्व से लोग कहते साइंस इज साइंस, विज्ञान विज्ञान है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर दो और दो जोड़ेंगे भारत में या हिंदू धर्म में तो चार होगा और दूसरे धर्म में वो छह या सात हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, साइंस साइंस है। ऐसी बात नहीं है कि देह ही केवल एक वस्तु है और उसके भीतर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं बदलता है, हमें इन बातों को बहुत सावधानी से ग्रहण करना चाहिए। आज के युग में कॉम्प्रोमाइज करने की बहुत भावना है, कहीं भी जमीन के भीतर लाश गाड़ दो और कयामत के दिन खुदा आकर उसमें प्राण डालेगा, अरे वो जो प्राण डालेगा वो सभी जानते हैं, वो शरीर हुआ मिट्टी, आत्मा गया दूसरे देह में, जातस्य ही ध्रुवम जन्म मृतस्य च, भगवान बोल रहे हैं। वो ऐसी बात नहीं है जैसे थर्ड क्लास की फिलॉसफी कोई दे दे और फिर कंप्रोमाइज करो। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, आत्मा शरीर बदलता रहता है, इस बात को दृढ़ता से ग्रहण करना चाहिए, ये समझने की चीज है। हम लोग ऐसे नहीं कि तुम कुछ मानो हम कुछ माने, बस तुम्हारे लिए वो सही है हमारे लिए ये सही है, यह बात नहीं है। भगवत गीता में कई बार भगवान विज्ञान शब्द का प्रयोग किए हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम बक्ष्याम अशेष। तो हम लोग विज्ञान के फॉलोअर हैं, उनको हम लोग किसी विश्वास मात्र के फॉलोअर नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने इसको स्थापित किया। तो इस प्रकार आत्मा नित्य है, वह शरीर बदलता रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस बात को विमुद्धा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। ईश्वर को तो सब मालूम है हमारा नाटक कि कौन कितना जानता है कौन नहीं जानता है। भगवान तो सब जानते हैं, तो ये दो वर्ग कर रहे हैं, एक विमुद्धा एक ज्ञान चक्षुषा, एक ज्ञान की आंख वाले और एक पूरा अंधा। और अंधे लोग बिना देखे कुछ फिलॉसफी बोला करते हैं। तो हमें ज्ञान के द्वारा सारी बातों को समझना चाहिए। तो भगवान का शरीर जो है पूर्ण ज्ञान घन है, पूर्ण चेतन है, उसमें जड़ कुछ भी नहीं। और केवल इतना ही नहीं है, वे समस्त चिन्मय वस्तुओं के स्वामी हैं, सबके मूल कारण है। चेतनस चेतना नाम नित्य नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, सबके मूल है। तो उनके लिए क्या आश्चर्य है, केवल दृष्टि मात्र से स्नेह से देख करके किसी को जीवित कर देना है, कौन आश्चर्य की बात। इस संसार में साधारण जीव भी दृष्टि से किसी को पोसते हैं, जैसे मछली। मछली केवल देख करके आंखों से अपने अंडों को पोस देती है। कछुआ स्मरण से अपने अंडों को पोसता है, केवल याद करता है स्नेह से और पोषण होता है। और पक्षी पंख से छाया करते हैं, अंडे को पोसते हैं, ऐसे शास्त्र कहते हैं। और देखा भी गया है, जैसे अंडा वो देते हैं तो अंडा के भीतर कोई इंजेक्शन नहीं देते हैं और कुछ डालते नहीं है बढ़ने के लिए, ऊपर से पंख से सहलाते हैं, छाया करते हैं, बढ़ जाते हैं। तो फिर भगवान के लिए किसी को देख करके जीवित कर देने कौन आश्चर्य की बात। शंका वही लोग करते हैं वास्तव में जो भगवान को भगवान के रूप में जानते ही नहीं, भगवान का मतलब ही नहीं जानते हैं, ये भगवान का क्या अर्थ होता है इसको नहीं जानते, इसीलिए अनेक प्रकार की शंका करते हैं। कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो मरे हुए को उन्होंने जिलाया और कोई अस्पताल में ले जाकर नहीं, कोई उपचार करके नहीं, या कोई रसायन पिला करके नहीं, कोई बहुत झाड़ फूंक करके नहीं, केवल दृष्टि मात्र जो आज तक जगत में हुआ ही नहीं। और यह भगवान कृष्ण के लिए सामान्य बात थी, उनके लिए बिल्कुल सामान्य बात है, उनके लिए आश्चर्य नहीं। इस तरह उन्होंने अपने भक्तों को जीवित किया। स्वनाथन, स्वनाथन का अर्थ जिनके रक्षक केवल कृष्ण थे, वही जिनके रक्षक जिनकी शरण में वे थे, भगवान ने ऐसे गोपों को और गऊ को जीवित कर दिया। जब ये उठे ते सम प्रतीत स्मृतय समुत्थाय जलांतिका आसन सुविस्मिता सर्वे वीक्षमाणा परस्पर। वे सभी अकस्मात उठ गए, सबको स्मृति प्राप्त हो गई। एक बार तो वे मर चुके थे लेकिन इसके बाद जगे, स्मृति प्राप्त हो गई। तो वे क्या सोच रहे थे, वे जानते थे कि हम लोग जल पी करके मर गए थे, यह बात उनको स्मरण में आ रही थी। तो वीक्षमाणा सुविस्मिता, वे चकित हो रहे थे कि हम लोग कैसे स्वस्थ हो गए, कैसे जी गए, कैसे हम जीवित हो गए। परस्पर एक दूसरे को देख रहे थे और परस्पर बातें कर रहे थे, तुम भी मर गए थे ना, हाँ तुम भी मर गए थे, तो हम जी कैसे गए, जी कैसे गए। तो सबने देखा श्री कृष्ण बड़ी बड़े स्नेहपूर्ण अनुराग युक्त दृष्टि से सब पर देख रहे थे, तो सबने यही माना कि कृष्ण के देखने से हम जीवित हुए। क्योंकि और कोई उपचार नहीं, कोई हॉस्पिटल में नहीं है, कहीं कुछ नहीं, लेकिन हम जी कैसे गए, हम स्वस्थ कैसे हो गए। तो चूंकि श्री कृष्ण के प्रभाव को पहले से ही जानते थे इस विषय में, कृष्ण नारायण आविष्ट, नारायणाविष्ट मतलब नारायण इनमें आविष्ट रहते हैं, इसलिए नारायण ही श्री कृष्ण में काम कर रहे हैं, इसलिए विश्वास किए। गर्गाचार्य ने कहा था कि नारायण समो गुण, यह बच्चा गुणों में नारायण के समान है, ऐसे उन्होंने कहा नारायण समो गुण। हे नंद महाराज, आपका ये बच्चा गुणों में नारायण के समान है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ ये था कि हे नंद महाराज, गुणों में केवल नारायण ही इस बच्चे के समान हो सकते हैं, यह भीतरी अर्थ था। गोपायस्व समाहिता, इस बच्चे की रक्षा कीजिए। गोपायस्व ऊपर से स्नेह पैदा करने के लिए कह रहे हैं, कहीं नंद महाराज के मन में ये बात हो जाती कि ओ ये भगवान है तब तो इसको क्या केयर करना है, तो सारी दुनिया को पोष रहा है, तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी। इसीलिए गर्गाचार्य ऊपर से कह दिए गोपायस्व, इसकी रक्षा कीजिएगा आप लोग, सब तरह से संभाल कर रखिएगा। सामने सत्य बोला जा रहा है लेकिन नंद महाराज को कुछ भी पता नहीं चला। गर्गाचार्य जी नाम रख रहे हैं कृष्ण का, तो कहते हैं कि नंद महाराज ये बच्चा आपका कभी वसुदेव जी का भी पुत्र हुआ है। कभी का अर्थ नंद महाराज ने समझा कि पिछले जन्मों में वसुदेव जी का भी पुत्र हुआ होगा, लेकिन गर्गाचार्य तो इसी जन्म की बात कह रहे थे, तो इसीलिए लोग इसको श्रीमान वासुदेव कहते हैं। गर्गाचार्य ये नाम दिए और कृष्ण नाम दिए, कृष्ण और वासुदेव दो नाम दिए कृष्ण के लिए। और इसके बाद कह दिए कि इसके तो बहुत नाम हैं, बहुत रूप हैं, बहुत गुण हैं, हम कहाँ तक वर्णन करें। तो जो भी हो, नंद महाराज यही समझते थे हमारे पुत्र हैं, ये हैं, वो हैं। तो बच्चे गर्गाचार्य की बात को जानते थे, क्योंकि नंद महाराज ने ये नहीं बताया था कि गर्गाचार्य इसका नामकरण किए हैं, ये किए हैं, लेकिन गर्गाचार्य इस बच्चे के विषय में यह बात कहे हैं। तो सभी लोग यही मानते थे कि नारायण का आवेश हमेशा रहता है कृष्ण में, इसीलिए इतने असुरों को मार रहा है, सफल हो रहा है, तो ये मान लिए। बोले विस्मित हुए वीक्षमाण परस्परम, वीक्षमाण और प्रीक्षमाण दोनों है, वे देख रहे थे एक दूसरे पर, एक दूसरे पर आश्चर्यचकित होकर के। और तब अन्व मन सत तदराजन गोविंदानुग्रहक्षितम पित्वा विषम परे तस्य पुनरुत्थान आत्मना। फिर संबोधन कर रहे हैं, हे राजन, हे महाराज परीक्षित, जैसे आपकी गर्भ में रक्षा हुई थी ब्रह्मास्त्र से, और भगवान ने आपको बचाकर महाराज युधिष्ठिर को दिया था, भेंट किया था, आपको दिया था, तो जैसे युधिष्ठिर महाराज ने यह माना कि आपका गर्भ में बचना, ब्रह्मास्त्र से जीवित रह जाना, यह केवल कृष्ण की कृपा से संभव है, संभव हुआ है, महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा माना था, उसी प्रकार बच्चों ने, गोपों ने यह माना कि विषम पित्वा परे तस्य, जो हम विष पीकर मर गए थे लेकिन पुनः उत्थानम, फिर हम जी गए, उठ गए, इसमें गोविंदानुग्रहित ग्रहक्षित श्री कृष्ण का अनुग्रह कारण है। अनुग्रह इच्छितम स्नेहावलोकन, जो श्री कृष्ण ने स्नेह से हम लोगों पर देखा है, यही कारण है। मतलब भगवान नारायण श्री कृष्ण के भीतर जो बैठकर हम पर कृपा दृष्टि किए हैं, तो यही कारण है कि हम जी गए, और कोई दूसरा कारण नहीं। विमान इस प्रकार कालीय उद्धार के पहले भगवान की यह लीला है, अपने सखाओं को, गोपों को और गौओं को विष जलपान की मृत्यु से बचाना। सर्वदा कृष्ण भक्तों को भगवान की इन लीलाओं को याद रखना चाहिए, और जब भी प्रीचिंग का अवसर आवे और कोई विपरीत व्यक्ति तर्क करे, तो इन सब घटनाओं के द्वारा उसका समाधान करना चाहिए। ये शास्त्र है, ज्ञान चक्षुषा या शास्त्र चक्षुषा, एक ही अर्थ रखता है। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवतम का दसम स्कंध का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री शुकावाच, तो श्रील सुखदेव गोस्वामी अब केवल एक श्लोक में काली दमन की लीला कह रहे हैं। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णाहिना विभुः तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पम तमुदवाशयन्। इस श्लोक में भी विभुः कृष्ण शब्द का प्रयोग, सर्व समर्थ परिपूर्ण ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कृष्णा को कृष्णा ही ने दूषित कर दिया है। कृष्ण ने देखा कि कृष्णा को कृष्ण ने दूषित कर दिया है। काली को भी कृष्ण कहा जाता है, क्यों? वो भी काला था। जमुना जी का पानी भी काला है, कारो का जमुना जीरो पानी लागे। जमुना जी का पानी भी काला है और काली सर्प और कृष्ण काले श्याम। भगवान श्री कृष्ण जमुना से बहुत स्नेह करते थे। इसका एक और भी कारण था कि यमुना का रंग भगवान श्री कृष्ण के शरीर समान था और नाम भी समान था। प्राय संसार में देखा जाता है एक नाम दो लोगों में मित्रता हो जाती है, प्राय ऐसा देखा गया। केवल एक ही घटना हम लोग सुने हैं कि चित्रांगद नाम का व्यक्ति एक चित्रांगद गंधर्व झगड़ा कर लिया, कहा तुम अपना नाम हटा दो। विचित्र वीर्य का भाई चित्रांगद, वो गया हिमालय में और उधर से गंधर्व लोग आए थे, इसी बात के लिए झगड़ा हो गया कि तुम्हारा क्या नाम है। वो कहा मेरा नाम चित्रांगद है, देवता बोल रहा है मेरा नाम चित्रांगद है, ये मनुष्य क्या कहता है, नहीं चित्रांगद मेरा नाम है, बस हटा तुम दूसरा नाम रख लो। मनुष्यों में इतना अज्ञान आता है, वो तो देवता तो बहुत काल के हैं, वो सोचता था मेरा नाम है, इसी के लिए झगड़ा हो गया, कलह हो गया। अंत में गंधर्वों ने इसको मार दिया, तब रहा विचित्र बीच, तो बाद में राजा बना। एक ही इतिहास लोग पढ़ते हैं कि दो नाम वाले लोगों में कलह हो गया, नहीं तो प्राय प्रेम रहता है। कृष्णा से कृष्ण बहुत प्रेमी था, लेकिन कृष्ण ने देखा कि ये दूसरा कृष्ण क्यों जमुना के पास आ गया है। भुजंग भी कहते हैं सर्प को, भुजंग अर्थ जर पुरुष भी होता है। देखिए हमारी पत्नी के पास दूसरा पुरुष कैसे आ गया, ये भी भगवान ने विचार किया कि भुजंग कहाँ आ गया है। वे उसको शुद्ध किया, जमुना को शुद्ध किया। तस्याः विशुद्धिम् विच्छन् सर्पम् तद् उद्वासयन्। यमुना को शुद्ध करने के लिए, यमुना जल को विष मुक्त करने के लिए उस सर्प को वहां से उद्वासयन् निर्वासित किया। जाओ भट, यह अभी एक भगवान की अद्भुत लीला है कि अपने धाम में आए हुए व्यक्ति को ने कहा जाओ आउट ऑफ वृंदावन, धाम में नहीं रह सके। कि दूसरे जीवों को दुख देने वाले लोग हैं, उनको भगवान वृंदावन भी नहीं चाहते। कालिये को निकाल दिए वृंदावन से, तम उद्वासयत, तम सर्पम उद्वासयत, निकाल दिए। तस्य विशुद्धि मन विच्छन, अनुयात चाहते हुए, जमुना की शुद्धि चाहते हुए, भगवान चाहते थे जमुना शुद्ध हो जाए, इसका जल विष से रहित हो, और इसके आए थे साथ ब्रज के जो लोग हैं वो जमुना का जल पी सके, उनका उपकार हो। और काली हद यह जमुना महातीर्थ है, इसलिए लोग बाहर के लोग भी आवे हैं स्नान करें, तो बाहर के जीवों का उपकार करने के लिए, ब्रज के लोगों का उपकार करने के लिए, जल उपकार करने के लिए, और काली नाग पर भी अपना चरण चिन्ह स्थापित करके उसका उद्धार करने के लिए भगवान ने सोचा। एक साथ भगवान के कई उद्देश्य होते हैं लीला करने में, और सब हित करना चाहते हैं। कालिये का भगवान ने दान किया, लेकिन इस लीला में अनुग्रह दिखाया जाए तो सबसे भारी अनुग्रह भगवान ने कालिये सर्प पर किया, जो जिसके फणों को अपने पैर से कुचले, तो जीवन भर के लिए उसके फण पर, प्रत्येक फण पर भगवान का चरण चिन्ह अंकित हो गया। डायरेक्ट द्वारका में लोग जाते हैं, सख का चिन्ह लेते हैं, उस मुद्रा चिन्ह पड़ जाता है, और भगवान ने डायरेक्ट अपने पैरों से चिन्ह बना दिया। जब काली नहीं जा रहा था, भगवान ने कहा जाओ जाओ, काली कहा कि हम जाएंगे तो वरुण जी फिर हमको मारेंगे, खा जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं, अब नहीं खाएगा, तुम अब डिवोटी हो गए, वैष्णव हो गए, तेरे सिर पर चिन्ह हो गया हमारे चरण का, तो तुम गरुण तुमको नहीं मारे। जब अभक्त थे तब तक गरुण परेशान करते थे, अब नहीं करेंगे, तुम जाओ। और वहीं पर अपने बच्चे और स्त्री के साथ मेरा भजन किया करना। कभी कभी वृंदावन से भी लोगों को भेजा जाता है, जाओ बम्बई में भजन करो, दिल्ली रहो, इधर उधर रहो, जरूरी होता है। ये भगवान ने परंपरा दिखाई है, सब लोग एक ही जगह भीड़ नहीं करेंगे और वृंदावन को अधिक अधिक गंदा करते जाए, कोई आवश्यकता नहीं है। वृंदावन बुलाते हैं भगवान, लेकिन कुछ लोगों को कहते हैं तुम जाओ, ऐसे क्रिया को तो सदा के लिए भेज दी, बहुत भयानक सर्प। एक श्लोक लीला समाप्त कर दी। सुखदेव गोस्वामी की बात को सुनकर महाराज को संतोष नहीं हुआ। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, कथम अंतर जले गादे ने गाद भगवान अहिम सवै जुगावासम जतासित विप्र कथ्यताम। सुखदेव गोस्वामी को विप्र संबोधन कर रहे हैं, हे ब्राह्मण, यहाँ विप्र का अर्थ होता है बहुत विद्या जानने वाले, वेद पाठात भवेद विप्र, जो वेद के तात्पर्य को जानता है वो है विप्र। और जन्मना ब्राह्मणों के यह संस्कार है द्विज उच्यते, और वेद पाठ भवेद विप्र त्रिभिर श्रोत्रिय लक्षणम। ये श्लोक है जागरूक के स्मृति। तो महाराज परीक्षित संबोधन पाए सुखदेव गोस्वामी को कि आप सभी विद्या जानते हैं, आप वेद जानते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अंतर जल, जल के भीतर, और जो जल विष से भरा हुआ था, विषैला हो गया था, और वो भी अगाध था, उस अगाध जल में भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार कालिए का दमन किए। असंभावना से प्रश्न नहीं है, महाराज परीक्षित स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जिज्ञासा है जानने के कि भगवान ने कैसे कैसे उसका दमन किया, कथम न्य गृहणा, कैसे दमन किए, क्या किए, इसको विस्तार से सुनाइए। आप तो केवल एक ही श्लोक में पार कर दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप और विस्तार से सुनाइए। और मैं ये सुनना चाहता हूँ कि सवै बहु युगावासम जथासित विप्र कथ्यता, वो बहुत युगों से उसी वृंदावन में रह रहा था, उस दह में रह रहा था, किस तरह रह रहा था, स्वभाव था, कथ्यता, इसको भी कहिए, इसे भी सुनाइए। इस तरह कथा में जिज्ञासा होनी चाहिए, तब वास्तव में कथा कहने में मन लगता है। कुछ ऐसे कथा श्रोता होते हैं जो ये प्रतीक्षा करते हैं कि ये वक्ता कब थकेगा और बंद करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कब थकेगा और कब टाइम होगा। कभी कभी तो लोग अपने घड़ी को भी गाली देते हैं कि जल्दी जल्दी टाइम क्यों नहीं बिता रहा, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन महाराज परीक्षित खाए पिए नहीं है, उपवास करके श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, और श्रीमद् भागवतम सुनने की यही विधि है, उपवास करके सुनना चाहिए। खा करके भागवत सुनने वाले सुनते नहीं है, होता है तो सहज तंद्रा आ जाती, खाकर कभी भागवत नहीं सुनना चाहिए, वो सुन ही नहीं सकता है आदमी, उसे नींद आएगी। महाराज परीक्षित तो आमरण अनशन व्रत किए थे, सुन रहे हैं, और इनको जिज्ञासा है, सुनना चाहते कैसे अगाध जल में भगवान ने कालिए का दमन किया। कालिए ह्रद वह एक योजन विस्तार वाला था, इस समय वो भर गया है, इन ऐसे लंबाई में एक योजन था जमुना में, और बहुत अगाध जल, यहाँ तक कि देवताओं का साहस नहीं होता था कि हम उसमें आए, इतना अगाध था। एक योजन चार कोस का होता है, 8 माइल लंबा था, और जमुना की जितनी चौड़ी धारा थी उतना था, और बहुत गहरा था, और पूरा जल खौलता रहता था कालिए के विष से। उसके 101 फण थे, और 101 फणों से वह नासिका से और आंखों से विष उगलता रहता था, और चलाता हुआ सिरह फण संचालन करता हुआ, बहुत भारी पावरफुल हीटर जैसे उसके फण थे, उसमें से विष निकलता था और आग बनता था, और उस आग से पानी खौलता रहता पूरा एक योजन में। इसलिए अगाधे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं महाराज परीक्षित, या उस अगाध जल में भगवान किस तरह कालिए का दमन किए, कृपया कथ्यताम, इसे हमें सुनाइए। मानो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि छोड़िए उस कथा को, बहुत दुखद कथा है, ब्रजवासियों को उससे बहुत दुख हुआ, भगवान को भी वो ग्रस लिया अपने देह से, इसीलिए वो सुनने लायक नहीं। आप क्यों सुनना चाहते हैं? तब महाराज परीक्षित कहते हैं, ब्राह्मण भगवतस्तस्य भूमना स्वच्छंद वर्तिनः गोपालो दार चरितम कस्तृप्येता मृतम जुसन। हे ब्राह्मण, आप वेद जानते हैं, वेद स्वरूप हैं, और वेद की बातों को दूसरों को समझाने में आप कुशल हैं, तो भगवान ने यह लीला क्यों की थी आप इसके मर्म को जानते हैं, तो आप हमें सुनाइए। क्या इस जगत में कोई ऐसा है जो अमृत पीने से आज तक तृप्त हुआ हो? कौन ऐसा है जो अमृत पीने से तृप्त हुआ? जैसे हम लोग अमृत पी रहे हैं, अमृत का अर्थ है जैसे जीना। क्या जीने से कभी किसी का पेट भरा है? कभी आदमी सोचता है कि अब न जीऊं, बहुत दिन जी लिया? लेकिन मृत्यु का प्रतिकार हम करना चाहते हैं, मृत्यु को हटा रहे हैं रोज रोज, कपड़ा ओढ़ करके जाड़ा में हम मृत्यु को हटा रहे हैं कि मरण आ जाएगा, और भोजन करके भूख की ज्वाला को हटा रहे हैं, दवा लेकर के रोग दूर कर रहे हैं, इस तरह हम मृत्यु से लड़ रहे हैं, मृत्यु का प्रतिकार कर रहे हैं। लेकिन कभी हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि अब बहुत दिन जी लिया, अब जीने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक भी जो आत्महत्या करना चाहते हैं वे भी वर्तमान परिस्थिति में नहीं जीना चाहते हैं, लेकिन उनकी जीने की इच्छा होती है, कहीं दूसरे वातावरण में, दूसरी जगह पर, दूसरे देह में भले जिएंगे लेकिन अब नहीं जीना चाहते, उनके अंदर भी जीने की लालसा रहती है, जीने से कभी मन नहीं भरता। जैसे जीवन से तृप्ति नहीं होती है, उसी तरह हे प्रभु, कौन ऐसा है जो गोपाल के उदार चरित्र को सुनने से तृप्त हो जाए, कह दे कि अब बहुत हो गया।